श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 48। कृपया इन आध्यात्मिक शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, युक्तस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समं भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समं भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समं भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। शब्दों का अर्थ देखिए। योगस्थः अर्थात समभाव होकर कुरु करो कर्माणि अपने कर्मों को, संगम आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग करो धनंजय। भगवान अर्जुन को धनंजय कहकर पुकार रहे हैं कि हे धनंजय, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग के अंदर स्थित होकर कार्य करो और साथ में क्या करो, संगम त्यक्त्वा उसकी आसक्ति को त्याग कर दो। किस चीज की आसक्ति को, कर्म की सिद्धि और असिद्धि। आगे भगवान कहते हैं सिद्ध्य सिद्ध्यो यानी सफलता और विफलता में सम संभाव भूत्वा होकर समत्व योग उच्यते। समत्व मतलब समता, चाहे आपको सिद्धि मिलती है या असिद्धि मिलती है, यानी सफल होते हो या असफल होते हो, तो वही में अगर आप एक जैसे रहते हो, संभाव रहते हो, तो योग उच्यते। वास्तव में योग यही है। अनुवाद देखिए, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना काम करो, ऐसी समता योग कहलाती है। इन अत्यंत ही अद्भुत शब्दों को समझने के लिए गुरु गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यामनोभीष्टं तापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वतनान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवाश श्री रूपम सागर जातम सहकण रघुनाथ प्रीतम तं सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनम गौरये श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशा कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतम गदाधरम शिवासदी गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ग्रंथराशि भगवद्गीता मात की जय हो। आज भगवान हमें योग में स्थित होकर काम कर किस प्रकार किया जाता है उसका उपदेश देना स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने योग में रहकर कर्म किस तरह किया जाता है इस बात को क्रम से बताया है। श्लोक नंबर 48 में भगवान ने बताया है समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता ही योग है, समता योग कहलाती है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने दो और श्लोकों में योग को डिफाइन करते हुए श्लोक नंबर 50 और 53 में भी योग के बारे में बताया, और 50 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। भगवान कहते हैं बुद्धि युक्त जहाती है उभी सुकृति सुकृत दुष्कृते समाधो तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। योग ही कर्म का कौशल है, कर्म करने का सही तरीका है। और श्लोक नंबर 53 में भगवान श्री कृष्ण ने योग की एक बहुत ही अच्छी बहुत ही कंप्लीट डेफिनेशन देते हुए कहा समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। समाधि में जब आपकी बुद्धि स्थित हो जाती है, यानी कि भगवान कहते हैं आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए जब बुद्धि, तो तुम्हें दिव्य चेतना में प्राप्त होती है। यानी कि योग वास्तव में क्या है कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए, तब वो वरम बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। वास्तव में योग तभी है जब आप कोई भी चीज विचलित ना कर सके जो वेदों की श्रुति विपत्ति बनाती, जो भी यहाँ भगवान ने कहा कि जो भी वेद में जो भी श्रुतियों में बताया गया यदा स्थास्यति निश्चला, आप यदि उससे निश्चल रहते हो तो वास्तव में वही योग है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में फर्स्ट टाइम योग को इंट्रोड्यूस करवाया था श्लोक नंबर 39 में। यदि भगवान ने कहा था ऐसा ते अभिहिता संख्ये बुद्धि योगी तृणाम शुणु बुद्ध्या युक्तो यया पाठ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ तक मैंने तुम्हें सांख्य योग द्वारा ज्ञान का वर्णन किया, अब मैं निष्काम कर्म द्वारा बता रहा हूँ उसे सुनो। यानी फर्स्ट टाइम भगवान ने कहा था बुद्धि योगे त्वमाम श्रोम, बुद्धि योग, योग के विषय में भगवान ने पहली बार श्रीमद् भगवद गीता में बोलना शुरू किया। श्लोक नंबर 39 से भगवान ने कहा अब उसे सुनो। क्यों सुनना है तुम्हें? बुद्धिया युक्त तो यह पाठ कर्म बंधन प्रहास्यसि, तुम्हारे कर्मों का बंधन तभी समाप्त होगा जब तुम योग में स्थित होकर कार्य करोगे। क्योंकि भगवान ने कहा तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधनों में अपने आप को नहीं फंसाओगे, बल्कि कर्मों के बंधन से कर्म बंधन प्रहास्यसि मुक्त हो जाओगे। अब योग में स्थित होकर कैसे कार्य करना है उस बात को भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 48, 50 और 53 में क्रम से बता रहे हैं, यानी सीरीज में बता रहे हैं। आज भगवान क्या कह रहे हैं? सिद्ध सिद्धियों समभूत्व समत्वम योग उच्यते, यानी समता इक्वेमिटी इज योग। वास्तव में योग यही है कि आप सफलता और असफलता में इक्वल रहो। आगे भगवान श्री कृष्ण 50 में क्या कहते हैं? योग कर्मसु कौशलम, योगा इज द आर्ट ऑफ ऑल वर्क्स। जितना भी कार्य, जो भी कार्य आप करते हो उसका सही तरीका करने का क्या है कि आप योग में स्थित रहकर करो। और श्लोक नंबर 53 में भगवान क्या कहते हैं? समाधाव चला बुद्धि तदा योग अवाप्स्यसि। वैन इंटेलिजेंट फिक्स इन समाधि, यानी एक वन पॉइंट अगर आपकी इंटेलिजेंट हो जाती है, समाधि में स्थित हो जाती है, तो उसी को योग कहते हैं। अब यहाँ पर यानी कि वो क्रम से है ना, सही डेफिनेशन तो लास्ट में भगवान बताते हैं, लेकिन आज तो भगवान ने क्या कहा है? समत्वम योग उच्यते, यानी भगवान क्या बताना चाह रहे हैं? स्पिरिचुअल लाइफ इज वन सेंस begins with equanimity। ये जो आपका आध्यात्मिक जीवन है वो एक तरह से समता से स्टार्ट होता है, equanimity से स्टार्ट होता है। क्योंकि अगर हम सिद्धि और असिद्धि में फंसे रहेंगे ना, जैसे अगर किसी मनुष्य को मटेरियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं होती है और वो ये सोचता रहता है कि मटेरियल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता रहता है कि अगर हम खाली में जो भी कार्य कर रहा हूँ वो सफल नहीं हो रहा है, जो भी मैं कार्य में हाथ डालता हूँ वो मुझे नाकामी का सामना करना पड़ता है, केवल नेगेटिविटी के बारे में, दुख और टेंशन के बारे में जो सोचते रहते हैं कि ये कार्य किया उसमें भी नाकामी, ये कार्य किया उसमें भी नाकामी, उससे दोस्ती की तभी भी मेरा फायदा नहीं हुआ, उससे दोस्ती की तो सबने मेरा साथ नहीं दिया। यदि हमारे माइंड में अगर हम मटेरियल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहेंगे ना, तो वी कांट थिंक अबाउट कृष्णा, फिर कृष्ण के लिए समय नहीं बचेगा, फिर हम सोच नहीं सकेंगे कि हम भगवान की भक्ति, क्योंकि हमारी मटेरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही हम, क्योंकि सारा फोकस हमारा मटेरियल प्रॉब्लम्स में होगा ना, सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, तो जब हमने फोकस किया है उन प्रॉब्लम्स को तो फिर भगवान को कैसे टाइम दे सकते हैं, क्योंकि भगवान के साथ तो योग ही नहीं जुड़ा। क्योंकि स्टार्टिंग जब कब होगी? जब आप सिद्धि और असिद्धि को समान मानो। क्योंकि अब देखो, अगर असिद्धि मतलब सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो भी आप भगवान के बारे में नहीं सोचते हो, और अगर किसी को सफलता प्राप्त हो रही है और वो सोचें कि मटेरियल लाइफ इज सो वंडरफुल, कितना अच्छा है, जो भी मतलब मैं कार्य कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो रही है, इतना सब जो भी मैं गेन करना चाह रहा हूँ, जिस चीज में हाथ डाल रहा हूँ तो इतना फायदा हो रहा है, और खुशियां जब बहुत ज्यादा होती है ना, और उनके बारे में यदि मनुष्य सोचता है कि इतनी सारी खुशियां हैं, तो खुशियों में यदि डूबेगा ना तो क्या सोचेगा कि हाउ आई सेलिब्रेट दिस एंजॉयमेंट, कि जो मुझे इतनी सारी खुशियां प्राप्त हुई हैं उनको मैं कैसे एंजॉय करूं, कैसे सेलिब्रेट करूं, और उस टाइम पर भी उसको भगवान की याद नहीं आ रही। लेकिन यदि वो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आपको योग में स्थित होकर कार्य करने, यानी कि मेन क्या है, सिद्ध सिद्धो समोभूत्वा, आपको सिद्धि और असिद्धि में इक्वल रहना, तभी क्या होगा, समत्वम योग उच्च शुरू, तभी आपके योग का स्टार्ट होगा। और योग स्टार्ट करने के लिए क्यों कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, कहते कर्म बंधन प्रहास्यसि, क्योंकि यदि आप सिद्धि और असिद्धि का विचार करते कार्य करोगे तो फिर बंधन में फंसोगे ना, क्योंकि फिर तो आप योग में स्थित होकर कार्य नहीं करो। वास्तव में कर्म करने का मतलब ये है कि आप कर्म, वास्तविक कर्म क्या है, कर्म के बंधनों से छूटना। और यदि कर्मों में ही आसक्ति लगी रहेगी, देखो भगवान ने कहा संगम त्यक्त्वा धनंजय, इसकी इसकी आसक्ति नहीं रखनी है, सिद्धि हो या असिद्धि हो उसमें अटैचमेंट नहीं रखना है। करना क्यों है कार्य, अब कोई ये सोच सकता है आसक्ति नहीं है जब कर्म के फलों में तो फिर कार्य क्यों करूं, लेकिन भगवान ने कहा योगस्थ कुरु कर्माणि समस्तम योग उच्यते, आपको योग में रहकर कार्य करना है, सिद्धि और असिद्धि को समान रखना है, और यही समत्ता है वो योग कहलाती है। क्योंकि उस समय हमारी मेंटेलिटी क्या होती है कि भगवान यदि सफलता प्राप्त हुई है तो ये आपकी कृपा है, और यदि असफलता प्राप्त हुई है तो ये भी आपकी कृपा है, क्योंकि आप देख आप मुझे मतलब टेस्ट कर रहे हो कि मैं असफलता में विचलित तो नहीं हो रहा हूँ, तुम्हारा नाम तो नहीं भूल रहा हूँ, या असफलता भी मेरे लिए एक तरह से फायदा है, क्योंकि जो पुराने मेरे जन्मों के कर्म हैं वो कट रहे हैं जिसकी वजह से मुझे ये असफलता प्राप्त हो रही है। तो इसीलिए भगवान ने कहा सिद्ध सिद्ध समोभूत्व, सिद्धि और असिद्धि को एकदम समान समझो। प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर काम करे, और योग है क्या, भगवान ने क्या कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में रहकर कार्य करो। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं योग किसको कहते हैं, योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। कितना सुंदर डेफिनेशन बता श्री प्रभुपाद ने योग का, क्योंकि इंद्रियां जो है वो सदैव चंचल रहती हैं, जो हमारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां क्या करती हैं, आंख कान नाक त्वचा रसना, वो सदैव आंख सदैव देखना चाहती है, कर्ण सदैव सुनते रहते हैं, और है ना जिह्वा सदैव बोलना चाहती है, सदैव खाना चाहती है, त्वचा स्पर्श करना चाहती है। तो भगवान यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं योग का मतलब होता है पहले आप इंद्रियों को वश में करो। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारा मेन मकसद है मन को वश में करना, यदि हमारा मन वश में है फिर हम चाहे जो भी देखें, जो भी खाएं, जो भी काले करतूत करें, क्योंकि हमारा मन तो भगवान में लगा हुआ। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कोई तरीका नहीं है, योग का मतलब होता है पहले इंद्रियों को वश में करो, इंद्रियों को आप वह कार्य करने के लिए परमिशन नहीं दो के जो शास्त्रों के विरुद्ध है। कर्म सु कौशल, कर्म का कौशल क्या है, कर्म समझ कि आप योग में रहकर कार्य करो, जो भगवान के साथ आपका संबंध है उसको याद करते हुए कार्य करो, और उसको याद करते हुए आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो कि शास्त्रों के विरुद्ध हो। कुछ लोग बोलते हैं भले हम नॉन वेजिटेरियन खाते हो, भले हम कुछ भी करते हो, हम अपनी इंद्रियों से कर रहे, मन तो भगवान में लगा हुआ। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को पहले वश में करो। वास्तव में भक्तों भले ठीक है ये बात सही है कि मन को वश में करना ही जीवन का लक्ष्य, क्योंकि मन वश में हो तो फिर कोई भी चीज हमें प्रॉब्लम सिद्धि सिद्धियों में हम समभूतवा हो गए। लेकिन यहाँ शास्त्र कहता है कि मन को वश में करना अत्यंत ही कठिन है। अर्जुन कहते हैं चैप्टर 6 टेक्स्ट नंबर 34, अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थी बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रिव सुदुष्करम। कृष्ण ये मन इतना चंचल है, इतना बलवान है, इतना उचंखल है, हठीना है और बहुत ज्यादा ताकतवर है, और तस्याहम निग्रहम मन्ये इस वश में करना मुझे कैसा लग रहा है? वायु रिवसु दुष्करम, वायु से भी, वायु को वश में करने से भी ज्यादा कठिन मुझे क्या लग रहा है? मन को वश में करना। और इसके उत्तर भगवान श्री कृष्ण एक्सेप्ट करते हैं, बोलते हैं हाँ अर्जुन तुम सही कह रहे हो। श्री भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 35 में, चैप्टर 6 श्लोक नंबर 35 में भगवान कहते हैं, असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम शलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण गृहीयते। हे महाबाहु अर्जुन, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत ही कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास से, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहीयते, उपयुक्त अभ्यास के द्वारा, विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। अब ये अभ्यास क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य की लाइन नंबर 3 में देखिए, यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह। अब मन पहले, बाद में निग्रह होता है, पहले इंद्रियों का निग्रह। क्या? ब्रह्मचर्य पालन पहली बात, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन करना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत में अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण कर सकता है। और इसको कैसे किया जा सकता है? श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझा रहे हैं, देखिए तात्पर्य में, श्लोक नंबर 6.35 के तात्पर्य को हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। क्या? कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त हो जाता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली हैं। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिसने कृष्ण का कोई, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीखता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रविष्ट होना। वास्तव में क्या है, ये स्टार्ट होता है भगवान के विषय में सुनने से, क्योंकि इंद्रियां जो हैं, उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले जो भी मन में बात जाती है ना, वो कान के रास्ते से जाती है। अब कान के रास्ते से हम जो भी डालेंगे वो मन को टच करेगा, है ना? किसी की खुशी होगी, किसी का मृत्यु होगा, किसी की खूबसूरती की बातें होंगी, किसी की बदसूरती की बातें होंगी, या किसी ने किसी को क्या किया, जो भी बात कान के जरिए से गई ना, वो डायरेक्ट से मन को, है ना, बोलेगी हाँ इसके बारे में सोचो, विचार करो। लेकिन यदि कान के जरिए से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण अंदर जाएगा, भगवान की कथाओं का, कृष्ण के विषय, कृष्ण के टॉपिक्स यदि कान के अंदर से जाते रहेंगे, तो फिर मन उन्हीं के बारे में सोचने पर विवश हो जाएगा। वर्णन तो क्या होगा, उपनिषद कहता है मन व मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, बंधाय विषयासंगे मुक्त्यैव निज विषयम मन। आपका मन जो है वो आपका मित्र भी है और शत्रु भी है, और अगर वो विषयों में आसक्त है, अपने विषय यानी जो जो हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं उनके जितने भी विषय हैं उनकी तरफ आसक्त है, तो वो आपको बंधन का कारण बनेगा, और अगर विषयों से मुक्त है तो वो आपकी मुक्ति का कारण बनेगा। यानी मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इंद्रियों को अपने विषयों से कंट्रोल करना पड़ेगा। आंखों को केवल कृष्ण के दर्शन, कानों को केवल कृष्ण कथा, जिह्वा को कृष्ण के विषय में बोलने और कृष्ण प्रसाद खाने का प्रयास कराना, और त्वचा को केवल हरि भक्तों के श्री चरणों का स्पर्श करने के लिए अभ्यास कराना। ये जो इंद्रियों का निग्रह है ना, उसके बाद यहाँ पर देखो श्री प्रभुपाद जी क्या कहते हैं आज के श्लोक में, योग का अर्थ है सदैव संचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। अब परम तत्व में एकाग्र करना है तो उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है, और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है, यानी कि परम तत्व कौन है, भगवान है, और भगवान के आदेश अनुसार कार्य करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो जब क्योंकि स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करो, तो फिर युद्ध के परिणाम के बारे में सोचने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं, कोई सरोकार ही नहीं है कि वो शायद जय हो, विजय हो, सिद्धि मिले या असफलता मिले, उसके बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। भगवान की आज्ञा है तो बस पालन करनी चाहिए। आगे शिवप्पा जी कहते, जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है, उनका आदेश है युद्ध करो, तो फिर जो भी होता है कृष्ण पर छोड़ दो। अर्जुन को तो बस कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है, है ना। भगवान के आदेशानुसार कार्य करो और फल को अब आदेश हमें कैसे मिलेगा, शास्त्र के जरिए। स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमें श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं कि किस तरह से आपको कर्म करना है। तो उनके आदेशों अनुसार यदि हम कार्य करते हैं तो सफलता या पराजय वो सब भगवान विचार करें। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य। एक बारी क्या हुआ, श्री प्रभुपाद ने कुछ भक्तों को एक ऐसे कंट्री में भेजा, स्विट्जरलैंड में, कि वहां पर जाके प्रचार करो। तो वो लोग वहां पर गए, लेकिन बहुत बारी मतलब काफी टाइम उन्होंने स्ट्रगल किया, कीर्तन करते थे, प्रचार करते थे, बट उनको कोई सक्सेस प्राप्त नहीं हो रहा था। मना रोज कोई उन्नति नहीं हो रही थी, भक्त भी नहीं आ रहे थे, वो इतनी तैयारी करते थे इतना, तो उनको ऐसा लगा कि अब क्योंकि सक्सेस हो नहीं रहा है तो फिर यहाँ पर बैठने का फायदा नहीं है क्योंकि भक्त नहीं बन रहे। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो वापिस आ गए। लेकिन है ना, श्री प्रभुपाद को बताया खुद नहीं जाके कि प्रभुपाद पता नहीं क्या बोलेंगे, तो दूसरे डिवोटीज ने जाके बताया, बोला इस लोग आ गए वापस क्योंकि वहां पर सफलता नहीं हो रही थी। तो श्री प्रभुपाद ने उनको बुलाया, बोला आपको मैंने बोला था वहां पर जाके प्रचार करो, आप लोग वापस कैसे आ गए। तो उन्होंने बताया कि श्री प्रभुपाद हमने इतना मेहनत किया लेकिन कुछ सफलता प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो फिर हमने सोचा कि क्यों वहां पर अपना टाइम वेस्ट करें, इससे बेहतर यहाँ पर आके गए। तो बोला तुमको मैंने ये कब बोला था जाके सफलता प्राप्त करो, वहां पर मैंने बोला था वहां पर सफलता प्राप्त, मैंने बोला वहां पर जाके प्रचार करो, सफलता और जो पराजय है वो मैं सोचने वाला बैठा हुआ हूँ ना, आप लोगों को नहीं, आप लोगों को खाली गुरु महाराज के आदेश का पालन करना होता है। मैं भी जब शुरू में अमेरिका आया था तो कोई भी मेरी बात समझ नहीं रहा था, बहुत टाइम तक मुझे ना कोई भी डिवोटी नहीं मिले थे, बहुत समय तक ऐसा हुआ कि मुझे निराशा को फेस करना पड़ा। लेकिन मेरे गुरु महाराज का आदेश था कि तुम्हें पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करना है, और आज उसी गुरु महाराज के आदेशों के अनुसार देखो हर जगह पर टेम्पल्स हैं, इतने सारे हम लोगों ने मंदिर बनाए, इतने सारे डिवोटी बनाए, मेरी वजह से नहीं, ये मेरे गुरु महाराज के आदेश का जो परिणाम है कि मैंने सिर्फ सिद्धि और असिद्धि गुरु महाराज को समर्पित की। और जो भी मैं कार्य कर रहा था, मैं अपने गुरु महाराज को यही कह रहा था कि मैं खाली कार्य कर रहा हूँ, उसमें सिद्धि या असिद्धि मुझे प्राप्त होती है, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, मुझे तो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करना है। तो आप लोगों को खाली आज्ञा का पालन करना है, आपको ये नहीं देखना है कि उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होती है या नहीं होती है, वो गुरु और कृष्ण बैठे हुए हैं देखने के लिए। आप अपना कर्म बिल्कुल ऑनेस्टली करो और जो भी उसका फल होता है वो सब भगवान को अर्पित कर दो। उसमें भगवान आपको जो अच्छा लगता है, मुझे सफलता प्राप्त हो, असफलता प्राप्त हो, जो भी है, लेकिन मैं तो वही करूंगा जो आपका आदेश है। तभी जीव रिलैक्स हो सकता है, कर्मों के बंधन से छूट सकता है। श्री श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है, अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देशन का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि से किया जाता है। कैसे किया जाता है, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही वास्तव स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। स्वामित्व भाव क्या, कि इस का फल ये प्राप्त होगा, मुझे ये मिलेगा, नहीं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है, तो ये है कृष्ण भावना अमृत। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। अब कृष्ण डायरेक्ट से आदेश देते हैं, हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है, इतनी सही नहीं है कि हम भगवान के आदेशों को समझ सके। तो जो कृष्ण के दासों का दास है, यानी कि जो भगवान का शुद्ध वैष्णव भक्त है, जो गुरु महाराज है, वो हमें सही विधि बता सकते हैं कि आपको क्या करना है, किस तरह से भगवान को प्रसन्न करना है, किस तरह से कार्य करना है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थिर होकर कर्म किया जा सकता है। जैसा कि अमित श्रभोपाल जी बता रहे हैं कि एक ही विधि है कि आप डायरेक्ट से कृष्ण से आदेश के अनुसार कार्य करो, और वो आदेश आपको कभी समझ में आते हैं जब आप एक शुद्ध वैष्णव गुरु महाराज के आश्रम में रहते हो। तो गुरु महाराज का आदेश आपके लिए कार्य का कौशल है, योग में आपको स्थित करा देगा, भगवान के साथ आपका योग जोड़ देगा, क्योंकि गुरु महाराज का आदेश जो होता है वो वही होता है जो कृष्ण का आदेश होता है। कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, और गुरु महाराज क्या कहते हैं, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण को नमस्कार करो, कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की सरेंडर हो जाओ। तो वही बात बताते हैं जैसे कृष्ण बता रहे, तो हमें गुरु का आश्रय स्वीकार करना चाहिए। और यहाँ पर श्री पप्पा जी बोलते हैं यही एक मात्र विधि है योग को अपने मतलब भगवान के साथ योग को कायम करने की। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। और क्षत्रिय है मतलब पहले बताया आत्मा हो, लेकिन क्योंकि जब तक हम इस जीव में, जीव जो है वो एक शरीर में होता है, तो उसके गुण और कर्म के अनुसार उसका कोई ना कोई वर्ण होता है। और अर्जुन का वर्ण क्या है, क्षत्रिय वर्ण है। उसको शिला प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि आपके वर्ण का क्या कारण होता है। सांसारिक नियम है कि जो लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं। सब क्या सोचते हैं कि मैं कैसे मैं संतुष्ट हो जाऊं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके भगवान को तुष्ट करना। यहाँ पर कहाँ पर, जब आप योग में स्थित हो जाते हो, कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाते हो, तो अपनी तुष्टि भूल जाकर भगवान की तुष्टि के विषय में सोचते हैं कि मैं कैसे कृष्ण को संतुष्ट करूं। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। कितना सुंदर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का एकमात्र लक्ष्य क्या है कि हम भगवान को संतुष्ट कर सकें। वर्णाश्रम अगर आप क्षत्रिय हो, आप ब्राह्मण हो, आप वैश्य हो या शूद्र हो, आप जो भी कार्य कर रहे हो, वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है, ये बात बहुत ही सुंदर यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ये लाइन शायद हम लोगों ने रहने दिए, छोड़ दिए बीच में। देखिए विष्णु पुराण में कहा गया है, जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ना, उसमें देखिए अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। और विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। आप जो भी हो, वर्ण या आश्रम आपका जो भी है, उसका उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। और आगे भगवान श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वैसे लोग क्या सोचते हैं कि मैं कैसे खुद को प्रसन्न करूं, लेकिन वर्णाश्रम धर्म में अपनी तुष्टि के बारे में बात ही नहीं चलती है, केवल ये सोचा जाता है कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं। अतः कृष्ण की तुष्टि के बिना कोई भी वर्णाश्रम धर्म का पालन कर ही नहीं सकता। मेन क्या है कि आप कैसे अपने गुणों में रहकर, अपने स्वभाव में रहकर कृष्ण को प्रसन्न करो। जो आपका स्वभाव है, आपके जो गुण हैं, उनके अनुसार आपको कार्य करना है, लेकिन खुद को खुश करने के लिए नहीं, कृष्ण को खुश करने के लिए। यही वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य है। यहाँ पर परोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। यहाँ पर इनडायरेक्टली भगवान को ये बता रहे हैं, भगवान ने कहा है क्या, समत्वम योग उच्यते, तो भगवान कहते हैं कि समान हो जाओ और जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे कार्य करो, क्योंकि यही कार्य का सही कौशल है। और इसी को योग कहते हैं। और अगर आप योग में रहकर कार्य करोगे तो क्या होगा, जो भगवान श्री कृष्ण ने 39 में बताया था, क्या होगा, कर्म बंध प्रहास्यसि, कर्मों के बंधन से छूटने का एकमात्र तरीका है योग में स्थित होकर कार्य करना, यानी कृष्ण भावनामृत में कार्य करना, अपनी इंद्रियों को संयमित करके, मन जो इंद्रियां सदैव विचलित रहती हैं, उनको संयमित करना है और मन को कृष्ण में लगाना है, कृष्ण के आदेश अनुसार कार्य करना है। और इसकी विधि क्या है, श्रवण से स्टार्ट होती है। श्रवण करो भगवान के विषय में, और मन क्योंकि श्रवण करने से भगवान में आकर्षित होता है, उसके बाद भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करो। यही विधि है आपको कर्म के बंधन से छुटकारा दिलाने की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।